اور اس کے بعد پھر دوسرے درجے والے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, اور وہ جو کہ دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا, دوسرے درجے کا اکانومی کلاس میں سفر کرنے والا, اس کو کیا ملے گا؟ فَالسَّلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, اس کو سلام کریں گے فرشتے, پھول نہیں بلدستے نہیں, بس سلام ہے, صرف اسی بات ہی کی خوشخبری کہ چلو جہنم میں جانے سے بچ گئے ہو, عذابوں کا شکار ہونے سے بچ گئے ہو. یہ خوشخبری بھی غنیمت ہوگی اس کے لیے جس نے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیا. یہ کون لوگ ہیں؟ جو کھلی ملی نیکیاں کرنے والے, اندر کی کچھ نیکیاں کچھ گناہ, کر لو جو بھی ہے ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سلامت کروا دے گا کہ جاؤ پھر تم بچ گئے ہو, تو پھر آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پالو, فرائض ادا کیے, کچھ کمی رہ گئی, کچھ توبہ سے معاف ہو گئے, کچھ کہیں سے کسی کی سفارش کام آ گئی, لیکن بچ بچا کے پوری کر لی. یہ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایک وہ چیز ہے کہ آپ بازار سے خریدتے ہیں بہترین برانڈ کی, اعلیٰ قسم کی, اور اس کو دینے کے باوجود بھی آپ کے پاس پیسے ہیں, کہ پیسے موجود ہیں, چیز اس سے اچھی نہیں مل سکتی. ایک چیز آپ نے وہ خریدی, اور دوسری صورت کیا ہے کہ جوڑ توڑ کر کے کچھ ادھر سے بچایا, کچھ ادھر سے بچایا, کچھ ادھر سے لیا, کوئی کسی سے قرضہ لیا, پھر کوئی چیز گھر میں لائے کہ چلو ضرورت تو پوری کرنی ہے. وہ ورائٹی نہیں ہوتی اس میں, اس میں آپ کی قیمت پہ نظر ہوتی ہے, بس یہی خوش ہیں کہ چیز آ گئی گھر میں. تو وہ لوگ جو جیسا کریں گے ویسا مل جائے گا, جتنی قیمت دیں گے اتنی ہی چیز مل جائے گی. لیکن تیسرے وہ تو بدبخت ہی رہے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ, اور وہ جو چھٹلانے والے تھے, اور اگر وہ چھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا, فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ, تو کھولتا ہوا پانی اس کی مہمانی ہوگی. وَتَسْلِيَةُ جَحِيمٍ, اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا, اندھیروں میں جینے والا اندھیروں کے حوالے کر دیا گیا, اور دنیا میں کولڈ ڈرنکس کے بغیر رہتا نہیں تھا, وہاں کھولتے ہوئے پانیوں میں بھیج دیا گیا, ابلتے ہوئے پانیوں میں. جاؤ, دنیا میں تمہیں مشکل لگتا تھا, جاؤ پھر آج یہی ہے, جو تم چاہتے ہو پھر وہی ملے گا. تم جھٹلاتے رہے, آج ہم بھی تمہیں جھٹلاتے ہیں. گیٹ آؤٹ, جنت میں نہیں جا سکتے, نکل جاؤ یہاں سے, چھوپ تو اس کو جہنم میں, اور کوئی اس کو جھوٹ نہ سمجھے. انہا ذالہوا حق الیقین, اور یہ سب کچھ یقیناً حق ہے. کیا سب کچھ؟ یہ تین مختلف انجام مقربین کے, اصحاب الیمین کے, اور اصحاب الشمال کے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے, کوئی یہ نہ سوچے کہ کچھ نہیں ہوگا, مرتے ہی سب ایک ہو جائیں گے. آج بہت سارے لوگ یہ سوچ کے گناہ کرتے ہیں, دیکھنا کچھ بھی نہیں ہونا, سب نے ایک جگہ ہی جانا ہے, اب کچھ نہیں ہوتا. لو اللہ تعالیٰ اتنا ظالم ہے آگ میں ڈالے گا, لو اس نے پیدا کیا وہ ڈالے گا. دنیا میں تو کوئی اپنی عدالتوں سے یہ نہیں کہتا کہ کوئی بات نہیں, اگر مقدمہ ہو گیا تو غم کیوں کرتے ہو, دیکھنا چھوڑ دے گا تمہیں تمہارا جج, پیسے لے کے چھوڑ دے گا. دنیا میں تو ناانصافی کی سوچ نہیں, تصور نہیں, اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی ناانصافیوں کی امید پہ جی رہے, کہیں زیادتیاں اور کہیں کچھ. اللہ تعالیٰ بولتا ہے انہا لہو لہوا, اب دیکھیں کہ ایک ایک لفظ کے اندر شدت ہے, تاکید ہے. حق الیقین, حق بات ہے, یہ پکی بات ہے. دیکھو کسی بھول میں نہ رہنا, ایسا ہو کے رہے گا. یہ عربی کا ایک اصول آ رہا ہے کہ جس نے اس کی شدت کو اور زیادہ بڑھا دیا کہ دیکھو آنکھیں کھول لو, یہ ہوگا, اور اس دن تم کر کچھ نہ سکو گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے, دیکھو تم نہیں پڑھ رہے نا فیل ہو جاؤ گے, دیکھو میں سچ کہہ رہی ہوں, پھر اسی کلاس میں رہو گے, پھر یہ پرانی کتابیں پڑھنی پڑیں گی, देखो कितनी शर्म आएगी उस वक्त तुम्हें कि ये मामला जो हो रहे हैं किस तरह से होते हैं। फसब्बिह बिस्मी रब्बिकल अज़ीम, बस तस्बीह बयान कीजिए अपने रब अज़ीम के नाम से, तस्बीह करो, उसकी अजमत बयान करो, उसकी तस्बीह और उसकी तहमीद, यही है आखरत की तैयारी का पहला नुस्खा। वो लोग जो कलाम मजीद को छुटलाते हैं, जब अल्लाह की तस्बीह करने लगेंगे तो छुटलाना कम हो जाएगा। जिनकी जिंदगी में अमल नहीं आता इस किताब पे, अमल आने लगेगा अल्लाह की तारीफ, क्योंकि जब अल्लाह की बुजुर्गी बयान करेंगे तो उसकी बात की बुजुर्गी भी तो आएगी ना, फिर बात ज्यादा आसान होती है। इस आयत के बारे में एक रिवायत आती है मुस्नद अहमद और अबू दाऊद में, उक्बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब यह आयत नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसको तुम लोग अपने रुकू में रखो, यानी रुकू में ये पढ़ा करो, सुभान रब्बियल अज़ीम। और जब सूरत आला आगे तीसवे पारे में आती है, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, जब वो नाजिल हुई तो फरमाया कि इसे सजदे में रखो, यानी सुभान रब्बियल आला कहो। इससे क्या पता चला कि नमाज में जो तस्बीहात हैं ये भी अल्लाह ताला के हुक्म से हैं, कोई अपनी मर्जी से रुकू में कहे सुभान रब्बी अल आला और सजदे में कह दे सुभान रब्बी अल अज़ीम ये नहीं कह सकता। अब आप देखिए कि इंसान को ये दावत दी गई कि देखो मौत को तो छुटलाना नहीं, बात शुरू कहाँ से फिर करें, कहाँ से पलटें, तो फरमाए फसब्बिह बिस्मी रब्बिकल अज़ीम, अपने रब का नाम बुलंद करो, इस किताब को आम करो, इसकी अहमियत लोगों को दिलाओ, उनको बताओ ये कितनी प्यारी बात है, ये कितना प्यारा कलाम है, ये किसकी बात है। इस किताब की तस्बीहें करो, लोगों को बता दो कि तुम्हारा इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, तुम खाली हो इसके बगैर। अपने आप को देखो, मरते वक्त जुबान पे क्या बात आती है जो दिल को लगी होती है, जो जिंदगी में जुबान पे होता है ना वही मरते वक्त आता है। मैं इन चीज़ों को शायद कभी ना समझ सकती, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी करीबी रिश्ते के एक इंसान को एक घंटे से ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा दुआएं मांगते कुरान पढ़ते देखा है कि ऐसा लग रहा था कि पूरा कमरा जो है ना वो फरिश्तों ने घेरा हुआ है। तकरीबन एक घंटा तक जो डेथ बेड पे थे उन्होंने दुआएं मांगी, और पहले खुद मांगते रहे और फिर आवाज़ लुढ़कने लगी आवाज़ की, फिर कहने लगे कि आप लोग मांगो, फिर मैं भी मांगती रही पास और वो आमीन कहते रहे एक एक बात। और ऐसे मुझे लग रहा था उस वक्त कि ये जान नहीं निकल रही, ये किसी फिल्म का सीन पिक्चराइज हो रहा है, यकीन करें बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये आर्टिफिशियल मौत है और हम सब एक प्ले खेल रहे हैं और ये सब तो कभी नहीं देखा। लेकिन वही बात है कि जो अल्लाह के वादों को जिंदगी में निभाता है, फअम्मा इन काना मिनल मुकर्रबीन फरौहुम व रैहानुम व जन्नतुन नईम। हम में से अक्सर लोग ये दुआ करते हैं कि मौत के वक्त हमें कलमा नसीब हो। आपका क्या ख्याल है वो अचानक आ जाता है? अचानक नहीं आता, जिंदगी भर जब वो कलमा दिल में रहता है, अमल में रहता है, फिर उसके बाद इंसान को मौत के वक्त आता है। इमाम इब्ने कय्यम का एक बड़ी प्यारी तोजी मुझे लगती है, कहते हैं कि बंदा मोमिन के दिल में अल्लाह की बात, उसकी मोहब्बत रची बसी होती है, तो जिस तरह कभी किसी इंसान को अचानक कोई खौफनाक चीज़ सामने आए, मतलब आप अपने लिए सोच सकते हैं, खुदा ना खास्ता एकदम चोर घर में रात को आ जाए, कोई गन दिखा दे, तो क्या होता है, फौरन बोलने लगते हैं ना ये भी ले लो, वहाँ रखा है, वहाँ रखा है। खौफ की हालत में अंदर की चीज़ बाहर आने लगती है। तो वो कहते हैं कि मौत के वक्त में मलकुल मौत को देख के बंदे मोमिन का वो ईमान जो दिल में होता है ना वो जुबान पे आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और बाज़ लोग बिस्तरे मर्ग पे भी यही कहते देखे गए हैं कि मेरे बाद मेरे घर का ये होगा, मेरी कोठी का ये होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। जो मौत के वक्त इंसान के सारे पर्दे खुल जाते हैं, आपको पता है, जो हम अंदर से होते हैं ना, उतना ही अल्लाह ताला हमें यानी वो लोगों के सामने जाहिर कर देता है। फिर इंसान वाकई अपने आप को महसूस करता है कि मैं धोखे में था, एक धोखा था जिसमें पड़े हुए। इतनी छोटी चीज है कि जैसे आप देखिए कि बड़ी अच्छी मिसाल लगती है मुझे कि दुनिया की मिसाल कैसे है, जैसे कोई रेस्टरूम में जाता है, आप देखिए हम खाते हैं ना, खूब खाते हैं और उसके बाद चंद घंटे के बाद रेस्टरूम में गए और फारिग हो गए, यहाँ का यहीं छोड़ दिया, ये दुनिया यहाँ ले रहे हैं यहीं छोड़ जाएंगे। कोई रखना चाहता है अपनी गंदगी को अपने साथ, पसंद करेगा कोई? मरने की सूरत में भी अगर अचानक भी मौत होती है तो उसके पेट को दबा दबा के निकाला जाता है कि इसके कफन ना गंदा हो, ये गंदगी निकल जाए। ये दुनिया ऐसी ही चीज है जिसके पीछे आज देखिए कि हमारी जरा दुनिया कमजोर होने लगे तो हमारी जान बेचैन होने लगती है, हम कहते हैं हाय अब जिएंगे कैसे। अल्लाह अकबर। यह हमने चूंकि पढ़ा कि मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं उनके साथ मरते हैं वह क्या होता है, तो मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ी सी चीजें आपको ऐड कराऊं, अगर आप लिखना चाहें कि मोमिन को क्या एहसास मिलते हैं मरते हुए और काफिर को, और मोमिन में जाहिरी बात है कि जो जिस दर्जे का होगा वो वहां तक पहुंच जाएगा। और ये जितनी भी चीजें आपको बता रही हूँ ये सब अहदीस में से लिया हुआ, लेकिन वक्त को बचाने के लिए सिर्फ मैं आपको वो टाइटल बता देती हूँ कि क्या क्या एक बंदा मोमिन को मिलेगा। तो मरते वक्त मोमिन को 10 किस्म के एजाज या उनमें से कुछ मिलते हैं। पहला एजाज क्या होता है? फरिश्ते रूह कब्ज करने से पहले आकर अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, और इसकी दलील चाहिए तो सूरत नहल की आयत 32 को जाके पढ़ लें। दूसरा एजाज मिलता है कि मोमिन आदमी की रूह कब्ज करने के लिए सूरज की तरह रोशन चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, इस्तकबाल करते हैं, सूरत अहज़ाब की आयत 44। तीसरा एहसास मिलता है कि मोमिन आदमी की रूह लपेटने के लिए रहमत के फरिश्ते जन्नत से सफेद रेशमी कफन अपने साथ लाते हैं, और इसके बारे में तो बड़ी तवील रिवायत है सही बुखारी की उबादा बिन सामित से। इसी तरह रूह को मुअत्तर करने के लिए फरिश्ते जन्नत से खुशबू भी अपने साथ लाते हैं, फरोहम व रैहानम व जन्नतु नईम। अगला एहसास है कि मोमिन की रूह कब्ज करते हुए फरिश्ते मोमिन आदमी को अल्लाह ताला की मग़फ़रत और रजामंदी की बशारत देते हैं, الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون। अगला एहसास है कि मोमिन आदमी की रूह जिस्म से निकलती है तो इससे रूए जमीन पर पाई जाने वाली बेहतरीन मुश्क जैसी खुशबू आती है, खुशबू आती है बंदे मोमिन के जाने से, क्यों कि दुनिया में भी उससे खुशबू आती है दीन की किताब की, वो कहीं से गुजर भी जाता है तो वो माहौल मुअत्तर हो जाता है। अगला एहसास है कि मोमिन आदमी की रूह के लिए जमीन व आसमान के दरमियान मौजूद सारे फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं, और जिसकी रहमत की दुआएं जिसके लिए फरिश्ते करें फिर सोचिए कि उसके बख्शे जाने में क्या देर हो सकती है। मोमिन आदमी की रूह को आसमान पर ले जाने वाले फरिश्ते आसमान के दरवाजे पर मोमिन आदमी का तारुफ करवाते हैं, तो मुहाफिज फरिश्ते खुशामदेद कहते हुए आसमान का दरवाजा खोल देते हैं। हर आसमान के फरिश्ते मोमिन आदमी की रूह को अलविदा कहने के लिए अगले आसमान तक जाते हैं। सातवें आसमान पर सातवें आसमान पर पहुंचने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मोमिन रूह का इंद्राज इल्लीयीन में कर दिया जाता है और रूह को वापस कब्र में भेज दिया जाता है। ये सारे रेफरेंस मौजूद हैं, यानी मरते ही इंसान को क्या कुछ मिलता है, क्योंकि इतने एजाज लेने के लिए अगर दुनिया के चंद दिन चंद साल अल्लाह की मर्जी के गुजार लिए जाए तो क्या घाटे का सौदा है, किसका फायदा होगा? आज शैतान हमें क्यों नहीं सुनने देता, क्यों नहीं बात मानने देता? क्यों? कि बस जिंदगी मुश्किल होगी। कितने दिन की है? मेरा तो ख्याल है कि काफी ज्यादा गुजर चुकी है, अब तो पता भी नहीं पीछे कितना है और क्या है, लेकिन उसके साथ हमारी कितनी उम्मीदें लगी हुई हैं। अब काफिर की रूह के साथ जो होता है उसको भी नोट कर लेते हैं। इसके साथ भी 10 किस्म के मामले होते हैं। सबसे पहले, मरते वक्त काफिर आदमी की रूह कब्ज करने के लिए नहायत खौफनाक स्याह चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। काफिर की रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते अपने साथ टाट का कफन लेकर आते हैं। कभी जिंदगी में ऊपर पाँव पड़ जाए तो छिल जाता है। रूह कब्ज करने से पहले ही फरिश्ते काफिर को ये कहकर डराना शुरू कर देते हैं कि ऐ नापाक रूह, निकल इस जिस्म से और चल अल्लाह के गुस्से और गजब की तरफ। काफिर की रूह कब्ज करते वक्त फरिश्ते इसके चेहरे और पीठ पर थप्पड़ मारते हैं, और फरिश्तों का थप्पड़ कितना होगा? एक पर पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कौमे लूत की बस्तियों को पकड़ा था और ऊपर जाके पलटा दिया था। काफिर की रूह कब्ज करते वक्त फरिश्ते आग के अजाब की खबर भी सुनाते हैं। मरते वक्त काफिर की रूह से रुए जमीन पर पाए जाने वाले बदतरीन मुर्दार जैसी गलीज बू आती है। को मुर्दा देखा हो कुछ दिन पुराना, काफिर रूह की बदबू महसूस करके जमीन व आसमान के दरमियान और आसमान में मौजूद तमाम फरिश्ते इस पर लानत करते हैं। क्या फायदा हुआ दुनिया की तारीफों का अगर मरते ही लानते शुरू हो गई। काफिर की रूह कब्ज करने के बाद फरिश्ते इसे पहले आसमान की तरफ ले जाते हैं और तारुफ कराने के बाद आसमान का दरवाजा खोलने की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन मुहाफिज फरिश्ते दरवाजा खोलने से इनकार कर देते हैं। ला तुफत्तहु लहुम अबवाब अस्समाई, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि इस काफिर रूह का इंदराज सिज्जीन में कर दिया जाए। और सिज्जीन क्या है? जमीन के घड़ों के अंदर घड़ा, जहन्नम का दफ्तर। और सिज्जीन में इंदराज के बाद काफिर की रूह को बड़ी जिल्लत के साथ आसमान अव्वल से जमीन पर पटक दिया जाता है। कितनी तकलीफ होती होगी, अल्लाह ताला बचा के रखे इस बुरे हशर से। अब देखिए कि मौत से इंसान कैसे बच सकता है। किसी को देखें तो कम से कम ये तो ख्याल आता ना कि ये सब मरहले मुझ पे भी आएंगे। कभी सोचा अपने बारे में हमने? बाद में जो होना है वो तो एक अलग कहानी है। जो मौत के मरहले जो लोगों ने हमारे साथ करना है, जो हमें उठाना रखना, तन्हाई में छोड़ के आ जाना। आज हम लोगों के बगैर जी नहीं सकते। महफिलें अच्छी लगती हैं, रौनकें अच्छी लगती हैं। एक वक्त आएगा कि हम बिल्कुल तन्हा होंगे। आज अच्छे कपड़ों के बगैर हम कहीं जा नहीं सकते, और एक वक्त आएगा कि बिल्कुल सफ़ेद चादरों में लिपट के जाएंगे। तो इस पे घबराने की बात नहीं, तैयारी की जरूरत है। अभी वक्त मौजूद है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हमने अल्लाह ताला की इस बात को सुन के और इसके ऊपर खुद अपने आप को भी झुकाना है और अपने साथ दूसरों को भी झुकाना है। फसब्बिह बिस्मी रब्बिकल अज़ीम। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ ये आयत बड़ी जुमानी है। बाहर देखा जाए तो पीछे वाली आयतों से इसका कोई रुख नहीं दिखता ना। वहाँ तो मोमिनी नेक लोगों की बात, बुरे लोगों की बात, लेकिन अब आखिर में अल्लाह ताला की तस्बीह की बात करके बता दिए कि बचना है तो इसी तरह बचना है। तुम्हारी जुबान उसकी तस्बीह करे और तुम्हारा जिस्म का एक एक उज्व उसकी तस्बीह करे, उसकी बात को माने। नबी सल्लम ने फरमाया कि कलिमतानी खफीफतानी अलल्लिसानी वसकीलतानी फिल्मीजानी। दो कलमे ऐसे हैं कि जुबान पे बड़े हल्के हैं लेकिन मेज़ान में बड़े भारी होंगे, और वो कौन से हैं? सुबहानल्लाही व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। चार लफ्ज़ हैं, कितना वक्त लगता है, लेकिन कब आखिरी दफ़ा हमने पढ़े थे? मेज़ान में भारी हैं। जिस दिन नेकियां तुलने का वक्त आएगा तो कोशिश करनी है कि हमने अपनी ज़िंदगी में इस कलाम को जगह देनी है। पूरे रुकू के अंदर जो पैगाम था, जो इसका थीम जिस पे ये चीज़ जा रही थी, वो एक सवाल था जिसका जवाब अब हमने खुद तैयार करना है। और वो जवाब क्या है? अफबिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून। अपना जायज़ा लेना है इंशाल्लाह ताला। हमने इस आयत की रोशनी में चेकलिस्ट एक नज़र से देख लीजिए जल्दी से, क्या करना है अब इस रुकू को पढ़ के? इस किताब का काम करना है। ये किताब अल्लाह की तस्बीह ही तो है, ये उसी की बातों को तो बुलंद करेगी। और उसके बाद फिर अपने दिल को इस चीज़ का यकीन दिलाना है कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है, इसमें गुजरे हुए और आने वालों की बातों की खबरें हैं, हमारे आपस के मामलात का फैसला करने वाली किताब है। ये किताब हंसी और दिल लगी नहीं, ये दो टोक बात है। जो सरकश कुरान ने मजीद को छोड़ेगा, अल्लाह ताला इसकी कमर तोड़ देगा। और जो कुरान को छोड़ के किसी और चीज़ को हिदायत का जरिया बनाएगा, अल्लाह उसको गुमराह कर देगा। ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है, हिकमतों से भरी याद दहानी है, ये सीधा रास्ता है। इसके होते हुए ख्वाहिशात गुमराह नहीं करती, इसके होते हुए जुबानें लड़खड़ाती नहीं। अहले इल्म का दिल कभी इससे नहीं भरता। ये बार बार दोहराने से इसकी ताजगी पुरानी नहीं होती, इसके अजायब कभी खत्म ना होंगे। कुरान पाक की सनत पर जिसने बात की वो सच की, और जो अमल करेगा वो अजर पालेगा। और कुरान पाक की बुनियाद पर जो फैसला करता है वो इंसाफ के साथ करता है। और जिसने इस किताब की दावत दी, असल में उसने सिराते मुस्तकीम पे चलने की दावत दी, जिसकी दुआ हम हर रोज जानते या अनजाने में मांगते हैं 17 बार, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो अगर वाकई सोच लिया अब अपनी ज़िंदगी में सीधा रास्ता पाना, तो फिर इस किताब के लिए तैयारी और इसके आने वाले सफ़र में अपने आप को कमिट करने की तमन्ना और आरज़ू हम सब के दिलों में होनी चाहिए। एक छोटी सी बात जो बीच में आई थी, इल्लल मुतहरीन, टेक्स्ट के अतबार से ये फरिश्तों ही की बात थी, लेकिन बाज़ लोगों ने इस आयत को बुनियाद बना के बात की है और उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन वो वहाँ तफसीलात हैं जहाँ हम इंशाल्लाह ताला गहराई से तफसीर करेंगे। लेकिन इस वक्त की तफसीर के नाते से सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि क्या कुरान पाक को बावजू होके ही उठाना लाजिम है। और एक और मसला जिस पे इस मौजू में बात होती है, वो حیض کے دنوں میں عورت کا قرآن پاک کو پکڑنا ہے. بڑی لمبی لسٹ موجود ہے میرے پاس دلائل کی دونوں طرف سے, کچھ لوگ جائز کہتے ہیں کچھ ناجائز, لیکن آپ کے لیے ایک انسٹنٹ قسم کی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جس چیز کی دل میں محبت ہوتی ہے آپ اس کو, اس کی بے قدری تو نہیں کرتے, لیکن قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے. گو کہ پسندیدہ کیا ہے کہ وضو کیا جائے, وضو نہ ہو قرآن پڑھ سکتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. لفظوں کو چھونے سے اجتناب کریں, لیکن جلد کے ساتھ یا حاشیے سے قرآن پاک پکڑ سکے تو اس کی اجازت ہے انشاءاللہ تعالی. یہ خلاصہ ہے وہ سارے اقوال کا. اور حیض کے دنوں میں بھی قرآن پاک پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں, اور چھونے کے بارے میں یہ ہے کہ سادہ قرآن جس میں صرف عربی کے لفظ ہیں اس کو چھونے سے اجتناب کیا جائے, لیکن ترجمہ اور جس کے ساتھ کچھ اپنے لفظ مل جاتے ہیں پھر وہ قرآن نہیں رہتا, وہ تفسیر بن جاتی ہے, یا وہ آپ کے اپنے نوٹس ہوتے ہیں اس کو چھو سکتے ہیں گلوز کے ساتھ, یا آپ ہاتھ میں پینسل سے پیپر پلٹ لیں, اور اس کے علاوہ اگر چاہیں تو پھر لفظوں کو چھوئے بغیر اس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, خاص طور پہ اس کے اندر جبکہ وہ پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہو تعلیم اور تعلم کے لیے. اور اس کے لیے مطلب جو موجود ہیں الحمدللہ فتاوی, اگر آپ لوگ اسلام کیو اے ISLAMQA.com اس پہ جا کے اسپیسیفک ٹاپک میں چاہیں تو آپ کو وہ سارے فتاوی مل سکتے ہیں جو سعودی عرب کی دارالافتا کمیٹی سے آتے ہیں ہر سال. تو اس میں بھی الحمدللہ ایسی ہی چیزیں ہیں, میں صرف ایک یا دو آپ کو چھوٹے چھوٹے اس میں سے پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ سننے والوں کو جہاں تک بھی اس کا فائدہ ہو سکے. وہاں ایک سوال تھا کہ ہم گرلز کالج کی طالبات کے لیے قرآن پاک کا ایک پارہ حفظ کرنا ضروری ہے, کبھی کبھی امتحان کا وقت پیریڈز کے دنوں میں آ جاتا ہے, تو کیا جائز ہے کہ قرآن پاک کی صورت کاغذ پر لکھ کر یاد کر لی جائے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے, علماء کرام کا قول ہے کہ حیض اور نفاس, نفاس کہتے ہیں جو پریگننسی کے بعد یعنی 40 days کا جو پیریڈ ہوتا ہے, کے دوران عورت بغیر مصحف چھوئے قرآن پڑھ سکتی ہے, اس لیے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل ثابت نہیں. دونوں قسم کی عورتیں کسی پاک کپڑے کے ذریعے قرآن کو پکڑ کر پڑھ سکتی ہیں, اسی طرح کاغذ پر لکھ کر ضرورت کے وقت اس کی مدد سے پڑھا جا سکتا ہے. البتہ جنبی قرآن نہیں پڑھے گا یہاں تک کہ غسل کر لے. جنبی کہتے ہیں جنابت کی حالت یعنی شوہر اور بیوی کے تعلق کے بعد کی کیفیت. حائضہ اور نفاس والی عورت کو جنبی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ ان کی مدت طویل ہوتی ہے, لیکن جنبی تو جنابت کے سبب سے فارغ ہوتے ہی فوراً غسل کر سکتا ہے. یعنی وجہ بھی انہوں نے بتا دی اس میں کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک اپنے ہاتھ میں ہوتے وقت تھوڑا وقت کی بات ہے غسل لیا جا سکتا ہے, لیکن پیریڈز اور نفاس بہت لمبا عرصہ ہے, تو اس دوران اگر اتنے دنوں تک ایک عورت کو محروم کر دیا جائے قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے سے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہوگا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب عورتوں پہ ایسی پابندیاں لگیں تو اس کی وجہ سے آج نسلیں دین سے دور ہو گئیں. اسی طرح کہ عرفات کے میدان میں بہت سارے لوگ حج کے سفر میں ہوتے ہیں تو ایسے سوال اٹھتے ہیں. اور سوال ہے, کیا حائضہ عورت عرفات میں کتاب کی مدد سے دعائیں پڑھ سکتی ہے جبکہ اس میں قرآن پاک کی آیات بھی ہوتی ہیں؟ تو جواب دیا ہے انہوں نے کہ حیض اور نفاس والی عورت مناسک حج سے متعلق لکھی گئی کتابوں میں موجود دعائیں پڑھ سکتی ہے, بلکہ صحیح قول کے مطابق قرآن بھی پڑھ سکتی ہے, اس لیے کوئی ایسا صریح نص موجود نہیں یعنی کوئی دلیل موجود نہیں جو حیض اور نفاس والی عورت کو قرآن پڑھنے سے روک رہا ہو. صرف جنبی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ حالت جنابت میں قرآن نہ پڑھے. حیض اور نفاس والی عورت کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حائضہ اور جنبی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے, لیکن یہ ضعیف حدیث ہے کیونکہ اسے اسماعیل بن عیاش نے حجازی راویوں سے روایت کیا ہے, اور جب وہ حجازیوں سے روایت کرتے ہیں تو محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہوتی ہے روایت, لیکن وہ قرآن کو بغیر چھوئے زبانی پڑھے گی. البتہ جنبی جب تک غسل نہ کر لے اس کے لیے قرآن پاک پڑھنا زبانی یا مصحف کی مدد سے جائز نہیں, اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جنبی کا وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے کہ مباشرت سے فراغت کے بعد فوراً ہی غسل کر سکتا ہے اور معاملہ اس کے اختیار میں ہے, اور جب چاہے غسل کر سکتا ہے لیکن پانی کے استعمال سے عاجز ہے تو تیمم کر کے نماز اور قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن حیض اور نفاس والی عورت کا معاملہ اس کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور پیریڈز میں کئی دن لگ جاتے ہیں اور نفاس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اس لیے ان دونوں کو قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ بھول نہ جائیں اور قرآن اور قرأت کی فضیلت اور احکام شریعت کو سیکھنے سے محروم نہ رہیں. لہٰذا ایسی کتابوں کا پڑھنا بدرجہ اولا جائز ہوگا جس میں قرآن و حدیث کی دعائیں ہوتی ہیں. علماء کرام کے دونوں اقوال میں یہی صائب اور صحیح رائے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات پہ عمل کرنے کی توفیق دے، بلا وجہ کی پابندیاں لگا کے انسان اپنے آپ کو نہ روکے. اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ نہیں، اسی سے پوچھیں کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں ہی تمہاری ماں ہے، اس کو پروف کر سکتے ہو؟ آپ کہتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اسٹمک میں جاتا ہے، اس کو کوئی اپنی بغیر کسی مشین کے پروف کر سکتا ہے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ جس کو نہیں ماننا وہی ایسی بات پوچھے گا. ایسے سوالوں کا جواب دینے سے پرہیز کیا کریں، اوائڈ کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.